पांचवा मुर्दा घर, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, 1974, पृष्ठ संख्या 139। मुर्दा घर बंबई की झोपड़पट्टी के जघन्य कुत्सित एवं विद्रूप जीवन का एक सशक्त आकलन है। उसमें शराब, जुआ, मटका जैसे स्लम्स विस्तारों में चलने वाले व्यापार तो है, किंतु नारी जीवन की दृष्टि से देखें तो उसमें मैना, पार्वती, लैला, मरियम, बसीरन जैसी एक-एक दो-दो रुपए में शरीर का सौदा करने वाली वेश्याओं के जीवन की गंदी, घिनौनी, षडांगपूर्ण पर कहीं-कहीं मानवता की झिलमिलाहट से दीप्त छवियां उभर कर आती हैं। उपन्यास के कथ्य और उसमें व्यंजित चिंतन से कोई भी सामान्य पाठक कह सकता है कि उसका लेखक प्रगतिशील जीवन मूल्यों का पक्षधर होना चाहिए। डॉक्टर अजीत कुमार ने तो इसे हिंदी उपन्यास लेखन का एक उच्च शिखर मानते हुए उसके लेखक को गोरकी, बालजाक, कुप्रिन तथा प्रेमचंद जैसे कथाकारों की पंक्ति में बिठाया है। डॉक्टर पारुकांत देसाई के शब्दों में प्रस्तुत उपन्यास में नियोन लाइट से जगमग सफेद इमारतों वाले सफेद पोश बस्ती के कॉन्ट्रैक्ट में बंबई की एक गंदी, घिनौनी, सड़ांध से भरी झोपड़पट्टी की सच्ची यथार्थ तस्वीर को लेखक ने इस खूबी से उभारा है कि हमारे सभ्य समाज की परत दर परत खुल गई है और यह अपने नग्न स्वरूप के साथ चेतना की संवेदनशीलता के कटघरे में आकर उपस्थित हो जाता है। महानगरों की इमारतों के समानांतर फुटपाथों पर भी लाखों करोड़ों मनुष्य बसते हैं, जो कुत्ते, कौओं और रेंगते हुए कीड़ों से भी बदतर जिंदगी बसर करते हैं और जिन्हें समाज की जूठन और गंदगी के अतिरिक्त कुछ नहीं समझा जाता। उन लोगों की इच्छा आकांक्षाओं, सपनों, आशाओं, निराशाओं, अच्छाइयों, बुराइयों को, उनकी अभागी अपाहिज जिंदगी की अभिशप्त नियति को, उनकी सड़ांध से भरी धूल और कीच में बरबस औंधी पड़ी फुटपाथ पर एकदम सपाट गिरी लटी मजबूर जिंदगियों के आंसू भरे दर्द को ज्यों क्या त्यों उनके अपने परिवेश एवं शैली में चित्रित कर लेखक ने अपने दुस्साहस का परिचय दिया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ 68 हिंदी उपन्यास डॉक्टर पारुकांत देसाई पृष्ठ संख्या 163 164 पृष्ठ संख्या 140। इस विषय पर के अब्बास के एक फिल्म शहर और सपना जयंत दड़वीकृत उपन्यास चक्र तथा मराठी में ही उपलब्ध माहिम ची झोपड़पट्टी जैसी रचनाएं प्राप्त होती हैं। उर्दू के प्रसिद्ध कथाकार कृष्णचंद्र ने तो बंबई के घृणित जीवन पर अनेक उपन्यास तथा कहानियों का प्रणयन किया है। इस दृष्टि से जगदम्बा प्रसाद दीक्षित शोषित समुदाय के पक्षधर के रूप में कटा हुआ आसमान तथा प्रस्तुत उपन्यास में उभारते हैं। परंतु इधर पिछले कुछ वर्षों से उनका लेखन जिस दिशा में जा रहा है, उसे किसी भी दृष्टिकोण से यथार्थवादी साहित्य का परिचायक नहीं कह सकते। इस संदर्भ में राजेंद्र यादव ने फैंटेसी शैली में दीक्षित जी के संदर्भ में कहते हुए बताया है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, तो इसमें नया क्या है? वे, ब्रैकेट में प्रेमचंद, सोचते हुए कहने लगे, बहुत से ऐसे लेखकों को तुम, ब्रैकेट में राजेंद्र यादव, भी जानते होगे, जो पहले तो सन्निपातिक रूप से क्रांतिकारी होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों का ऐसा विश्लेषण करेंगे कि अच्छों अच्छों के छक्के छूट जाएं। लेनिन माओ के उद्धरणों में सांस लेना मुश्किल है, लेकिन जब इन हवाई यात्राओं से देश लौटेंगे तो हिंदुत्व, आध्यात्म, सांप्रदायिकताओं में जा घुसेंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ मेरी तेरी उसकी बात राजेंद्र यादव अपनों की गुलामी नामक लेख हंस दिसंबर 1996 पृष्ठ संख्या 4। दीक्षित जी निर्मल वर्मा, प्रभात जोशी, डॉक्टर मधुकर गंगाधर जैसे लोग इसी विचलित मानसिकता के दायरे में आते हैं। कुछ भी हो, प्रस्तुत उपन्यास में लेखक ने बंबई के निम्नवत वर्ग की उन औरतों का चित्रण किया है जो कभी बंबई में किसी सपने को लेकर आई थी और अब उनका वह सपना मर गया है। बिना सपने के व्यक्ति को मुर्दा नहीं तो और क्या कहा जा सकता है? मैं ना भी एक ऐसे ही सपने को लेकर आई थी। सोचा था अपने प्रेमी के साथ प्रेम और आनंद में जीवन व्यतीत करूंगी। अपना एक घर होगा, आंगन होगा, खुला आसमान और बच्चे होंगे। परंतु उनका वह प्रेमी उसके विश्वास को सह दे देता है। बंबई में रक्त का व्यापार करने वाले एक सौदागर के हाथों वह उसे बेच देता है। फिर तो एक के बाद एक अनेक लोगों के हाथों गुजरते हुए वह पोपट की पनारे पड़ती है। पोपट ने उसे खोली बना देने का वादा किया था, इज्जत की जिंदगी देने का वादा किया था, पर वह एक नंबर का जुआरी और लबार है। मैना को आसरा देने के बजाय वह खुद उसकी कमाई के पैसे को शराब तथा आकरों में फूंक देता है। वस्तुतः पोपट मैना का पति नहीं बल्कि पति का तर्क है। जिस प्रकार कांच घर ब्रैकेट में राजकुमार भ्रमर की केवारी बाई का पति अन्ना जी भी एक फर्जी पति है जो खुद होकर अपनी पत्नी के शरीर का सौदा करता है। मैना एक स्वप्न भंग मोह भंग स्त्री है। वह बनना चाहती थी एक आदर्श गृहिणी, पर परिस्थितियों के भंवर में पड़कर वैश्या जीवन जीने के लिए विवश हो गई। इसीलिए मैना के मन में काठियावाड़ से भागी हुई प्रेम वंचित लड़की के प्रति उसके मन में विशेष अनुकंपा है। पैराग्राफ चेंज। इस उपन्यास में बम्बई की झोपड़पट्टी की जघन्य जिंदगी को लिया गया है। यहाँ 5-5-2-2-1-1 कभी अठन्निया चार ठर्रा के एक एक कप में शरीर का सौदा करने वाली मैना, पार्वती, लैला, नैना, मरियम, बसीरन, नूरन, हीरा, रोजी, जमीला जैसे वेश्याओं के जीवन के कटु यथार्थ को लेखक ने कटु एवं निर्मम शैली में आलेखित किया है। भीषण दरिद्रता उनको लगा हुआ महारोग है। खड़िया का पाउडर ये अपने चेहरों पर थोप लेती हैं। पृष्ठ संख्या 141। ग्राहकों के लिए एक दूसरे पर झपट्टी भी मारती हैं, गाली गलौज और मारामारी भी करती हैं, परंतु एक दूसरे के सुख दुख में भी शरीक होती हैं। ये यदि धंधा ना करें तो उनके घर में चूल्हा न जल सकता। बच्चे के जन्म पर यहाँ खुशी नहीं बल्कि मातम मनाया जाता है, क्योंकि शिशु प्रसव के पूर्व के कुछ महीने तथा बाद के कुछ महीनों में वे अपना व्यवसाय नहीं कर पाती। पेट की आग ममता की छाती को सुखा देती है। बसीरन नामक वैश्या को इस बात की चिंता है कि बुढ़ियाने पर पुलिस वाले उसे पकड़ेंगे नहीं, और कभी कभी 20-25 दिन जो अच्छा खाना मिल जाता है वह भी नसीब नहीं होगा। इस उपन्यास में पुलिस की नीतियों का भी पर्दाफाश हुआ है। मुर्दा घर की झोपड़पट्टी में दारू वाले और मटके वाले भी हैं, परंतु जब पुलिस की रेड होने वाली होती है तो उन्हें पहले से आगाह कर दिया जाता है। इस उपन्यास की हीरा नामक वैश्या एक स्थान पर कहती है, इन्वर्टर कामापन, पुलिस लोग का धाड़ होएगा आज फिर। कैसा मालूम पड़ा तेरे को, वो दारू वाला किस्तिया और वो मटका वाला दोनों चले गए इधर से। किस्तिया दारू सब पीपा हटा दिया, मटका वाला भी अपना कागज वागज लेके चला गया। ये साला लोग पुलिस लोग को हफ्ता देता ना, वो इनको पेला से बोल के रखता। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। संदर्भ ग्रंथ जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मुर्दा घर, पृष्ठ संख्या 149। एमिल झोला एक प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं, अतः उनके उपन्यासों में मनुष्य की आंतरिक नग्नता, उसके भीतर के हिंस प्रसू का खुलकर चित्रण हुआ है। मानव जीवन की जघन्यता और विभत्सता झोला के यहाँ खुले और प्रकट रूप में आए हैं। परंतु नग्न यथार्थ के ऐसे चितेरे उपन्यासकार ने भी मानव जीवन के कीचड़ में कहीं कहीं मानव आस्था के कमलों को खिलाया है। जघन्य और घृणित से घृणित मानव जीवन में भी उसने ऐसे पात्रों और प्रसंगों को उकेरा है कि मानव जीवन के प्रति आस्था गहराने लगती है। इस संदर्भ में प्रगतिवादी आयामों और जीवन मूल्यों के पक्षधर डॉक्टर शिव कुमार मिश्र के निम्नवत विचार उल्लेखनीय समझे जाएंगे। इन्वर्टेड कॉमापन, यथार्थवादी साहित्य मनुष्य को निराशावादी और नियतिवादी भी नहीं बनाता। मनुष्य को उसके परिवेश से पूर्णतः परिचित कराता हुआ वह उसे विरूपता के प्रति सजग करता है, ताकि वह उसके उन्मूलन के लिए सन्नद्ध हो सके। समाजवादी यथार्थवाद का समूचा कृतित्व मनुष्य की उदात्त जीवन मूल्यों के प्रति आस्था का प्रमाण है। जीवन में जो कुछ श्रेष्ठ और सुंदर है, यह सबको मनुष्यता की थाती समझता है और मनुष्य को उसकी उपलब्धि कराने को प्रेरित करता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ यथार्थवाद, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, पृष्ठ संख्या 153। इस उपन्यास में भी हमें कुछ ऐसे मानवतावादी जीवन मूल्यों का परिचय मिलता है। रोजी जज्बार को चाहती है। जब जज्बार को तड़ी पार किया जाता है, तब जिंदगी में पहली बार अपने लिए नहीं परंतु जज्बार के लिए भीख मांगती है, और भीख के पैसों से जज्बार की पत्नी हसीना और उसके पुत्र अमजद को खिलाती है। बसीरन हमेशा मैना से झगड़ती रहती है, परंतु जब मैना का पति ट्राम के नीचे कटकर मर जाता है, तब कहीं बसीरन उसके साथ मुर्दा घर जाती है और पूरे दिन उसके साथ बैठी रहती है, जबकि मैना के साथ बैठने का साफ मतलब यह होता है कि उस दिन फाका करना पड़ेगा। यहाँ यह तथ्य ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि सुखी संपन्न है, उनका अपने किसी परिचित के लिए इस प्रकार बैठना और बसीरन के इस प्रकार के बैठने में बड़ा फर्क है। यहाँ तो गरीबी का वह आलम है, पृष्ठ संख्या 142, कि धंधा न करे, ग्राहक न मिले तो पेट भरने की समस्या मुंह बाए खड़ी होती है। आसन्न प्रसवा मरियम के लिए जमीला ग्राहक छोड़कर उसके पास बैठती है। मरियम को जब बच्चा होता है, तब सब वैश्याएं मिलकर उन्हें खिलाती हैं। इस प्रकार के कई दृश्य और प्रसंग इस उपन्यास में मिलते हैं। वैश्याओं की इस भीड़ में जज्बार की पत्नी हसीना भी है, परंतु जज्बार हसीना और पुत्र अमजद के भविष्य के लिए जीवन में एक बार बड़ा हाथ मारना चाहता है, और मौका मिलने पर वह एक स्मगलर के यहाँ चोरी भी करता है। पकड़े जाने पर उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है, परंतु हसीना और अमजद का विचार करके वह उन सारी यंत्रणाओं को झेल जाता है। मैना का पति पोपट जुआरी शराबी और मवाली है। वह 2.5 रुपए में उसे खरीद लाया था। पोपट रातों रात हाजी सेठ की तरह धनवान होने के ख्वाब देखता रहता है, और इसीलिए मैना अपने शरीर द्वारा जो कमाती है उसको वह शराब और जुए में उड़ा देता है। फिर भी उसकी मृत्यु पर मैना बिलक बिलक कर रोती है। इसे जीवन की एक विडंबना ही कहा जाएगा कि जिंदगी भर मूल्यहीनता के बोझ ढोने वाले पोपट के शव की उपयोगिता होगी, उसका भी कुछ मूल्य होगा। मुर्दा घर का एक कर्मचारी मैना और बसीरन को समझाते हुए कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, वह छोकरा लोग जो इधर पढ़ने के वास्ते आता उनका काम में आ जाएगा। हड्डी का भाव बहुत जस्ती है आजकल। पूरा जिस्म का ढांचा का भाव 300 रुपया चलता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ जगदम्बा प्रसाद, मुर्दा घर, पृष्ठ संख्या 203। अस्पताल में जहाँ मुर्दे रखे जाते हैं उसे मुर्दा घर कहते हैं, परंतु यहाँ लेखक ने उसके प्रतीकात्मक अर्थ को ध्वनित किया है। वस्तुतः यह गंदी घिनौनी जघन्य घृणित और विभत्स बस्तियाँ ही मुर्दा घर हैं, जहाँ आत्माभिमान शून्य, मूल्यहीन, चेतनाहीन, चलती फिरती लाशें हमें दृष्टिगत होती हैं। पैराग्राफ चेंज, नदी फिर बहचली उपन्यास में भी पटना की गंदी खोलियों में चलने वाली सस्ती वैश्यागिरी का जीवंत चित्रण मिलता है। यहाँ कमलवा हो चाहे सरदवा, हर माल 2 रुपए 4 आने मिलता है। पुआल पर टाट और तकिए के बदले में हर बिछावन पर एक एक ईंट, रात होती है तो मोटी पर बने ताखे पर माटी का दिया जल जाता है। सुबह के रात के 10 बजे तक यह काम चलता रहता है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, संदर्भ ग्रंथ शिव प्रसाद सिंह, नदी फिर बह चली, पृष्ठ संख्या 278।